जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर कृष्ण कथा के दौरान गौचारण लीला का प्रसंग चल रहा है। पिछले तीन दिनों में हम देख चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब पौगंड अवस्था को प्राप्त किए तब उनको गायों को चराने की अनुमति दी गई। इसके पहले वो गाय के बछड़ों को वत्सों को चराया करते थे, लेकिन जब थोड़ी आयु बढ़ गई, 5 साल पूरे हो गए, पौगंड अवस्था में उन्होंने प्रवेश किया, तो ब्रजवासियों ने ये उचित समझा कि कृष्ण अभी बड़े पशुओं को अर्थात गायों को चराने के लिए ले जाने के लिए अभी समर्थ हैं। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण बलराम और अपने गोपगण मित्रों के संग रोज प्रातः काल में अपना भोजन स्वीकार करके वन में प्रवेश करते थे बांसुरी बजाते बजाते, और फिर वन के भीतर कौन से दृश्य उन्होंने देखे, किस प्रकार का एक मनोरम वातावरण वहां था वो हम चर्चा कर चुके हैं। वहां के भौरों की, कोयलों की मधुर आवाज, किस प्रकार से सारे पक्षियों ने, प्राणियों ने, यहां तक कि जो पेड़ हैं उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण बलराम जी गौओं का और ग्वाल बालों का स्वागत किया। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कृष्ण ये कह रहे हैं और इसका श्रेय बलराम को देते हुए कहते हैं कि ये सारे पेड़ पौधे, ये सारे हरिणियां, मोर, पशु पक्षी, यहां तक कि धरती माता भी आज धन्य हो चुकी हैं, क्योंकि आपके चरण कमलों का स्पर्श वहां हुआ है। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बातें बलराम जी से जो कर रहे थे वो समाप्त किए। अभी आगे सुखदेव गोस्वामी फिर से महाराज परीक्षित को वर्णन करते जा रहे हैं। क्या कहते हैं? श्री शुक उवाच, एवं वृंदावनम श्रीमत् कृष्ण प्रीतमनः पशून् रेमे संचारयन् अद्रे सरित रोदः सुसौनुगः। एवं इस तरह से वृंदावनम श्रीमत्, श्रीमत मतलब बहुत सुंदर, रम्य। श्री का अर्थ ये भी होता है ऐश्वर्यशाली, और सौंदर्य दोनों श्री शब्द के अर्थ होते हैं। जो श्री से युक्त होते हैं उनको श्रीमत कहते हैं। एवं वृंदावनम श्रीमत, वो वृंदावन जो कि बहुत सुंदर रम्य था, जो ऐश्वर्य से भरा हुआ था, ऐश्वर्य से पूर्ण था, ऐसे वृंदावन में कृष्ण प्रीतम मनाह जब प्रवेश किए तो बड़े प्रीति मन से, मतलब बड़े संतुष्ट मन से उन्होंने सब कुछ देखा। बलराम जी की ओर देखकर बलराम जी का गुणगान किया, और फिर पशुन रेमे, फिर अपने पशुओं को ले गए अंदर। संचारयन सम्यक चारयन, चारयन मतलब चरने के लिए, सम्यक चारयन मतलब बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने गायों को चराया। सम्यक चारयन, जिस तरह से कीर्तन और संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? संकीर्तन यज्ञ, सम्यक कीर्तन, परिपूर्ण कीर्तन, जो बढ़िया ढंग से परिपूर्णता से जो कीर्तन किया जाता है उसको सम्यक कीर्तन कहते हैं। तो उसी प्रकार से संचारयन, तो गायों को कैसे चराना चाहिए वो भी हमें श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण संचारयन गायों को ले जा रहे थे। कहां ले जा रहे थे? अद्रेह, अद्री मतलब पर्वत। वृंदावन में कौन सा पर्वत है? गोवर्धन। तो गोवर्धन के तट पर गोवर्धन के पास चराने ले जाते थे। और कहां ले जाते थे? सरित रोधसु। सरित मतलब नदी, रोधसु मतलब उनके तट, रोध मतलब किसी को रोकना। तो नदी के जल को कौन रोकता है, क्या रोकता है? तट। जो तट होता है ना, जो जमीन होता है, भूमि होती है, वो नदी के प्रवाह को रोकती है। रोध मतलब रोकना, तो सरित रोधसु मतलब नदी के तट। कौन सी नदी है वृंदावन में? जमुना जी। तो भगवान श्री कृष्ण बढ़िया ढंग से गायों को चराने ले जाते थे यमुना जी के तट पर और गोवर्धन में, और इस प्रकार से बड़े आनंद लेते थे। रेमे, रम धातु, रमण, रमण से आता है रेमे। तो ऐसे कार्य में वो बड़ा आनंद लेते थे। तो हमें भी आनंद लेना चाहिए ऐसी लीलाओं में। जब श्री कृष्ण को किसी कार्य में प्रसन्नता हो रही है, तो हमें भी ऐसे कार्य में प्रसन्नता होनी चाहिए। इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी अब आगे बड़े सुंदर ढंग से वर्णन करने वाले हैं कि श्री कृष्ण, बलराम और उनके साथी कौन से सुंदर सुंदर लीलाएं इस वन में कर रहे थे। गाय तो चरने जाते थे, ऐसा नहीं कि दिन भर वो केवल गायों के पीछे पीछे जाते थे। एक बार वन में प्रवेश कर लिया तो गाय अपना काम करते थे और बच्चे, ये ग्वाल बाल, वो उन अपना काम करते थे। गाय घास खाते रहते थे, चरते रहते थे। केवल अगर कोई गाय इधर उधर भटक गई तब कृष्ण बुलाते थे। नजर तो एक रहती थी, लेकिन फिर भी वो अपने लीलाओं में मस्त रहते थे। और इन लीलाओं को देखने के लिए देवी देवता भी बादलों के पीछे से वो देखा करते थे, क्योंकि ये लीला इतने मधुर थे। ये सारे कृष्ण लीला में ऐसे ही होता था, क्योंकि ये संधि देवी देवताओं को भी नहीं मिलता था। भगवान श्री कृष्ण अलग अलग अवतारों में जब प्रकट होते हैं इस भौतिक ब्रह्मांड में, तो ऐसा नहीं है कि वो केवल पृथ्वी लोक पर प्रकट होते हैं, स्वर्ग लोक में भी जाते हैं, ऊपर के लोकों में भी जाते हैं। जैसे वामन देव तो प्रकट हुए ऊपर के लोकों में, स्वर्ग लोकों में, वो तो इंद्रदेव के छोटे भाई हैं, क्योंकि उनकी माता थे अदिति, जो कि देवताओं की माता है। ये आखिर में जन्म लिए, इसलिए इंद्रदेव और देवताओं के छोटे भाई माने जाते हैं। तो भगवान ने स्वर्ग लोक में भी लीलाएं किए हैं, लेकिन इतने मधुर लीलाएं कभी किए नहीं जितने कि यहां पृथ्वी लोक पर आकर वृंदावन में किया। तो देवी देवता भी ये देखकर बड़े आश्चर्यचकित रह जाते थे, और इतना उनको आनंद आता था कि बार बार हर रोज अपने काम को छोड़कर कृष्ण लीला को देखने आते थे। अब क्योंकि भगवान आध्यात्मिक हैं पूरी तरह से, उनकी लीला को देखने में और उनकी लीला को सुनने में कोई अंतर नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब कोई अंतर नहीं इसमें। जैसे जब हम जल पीना चाहते हैं तो जल शब्द का उच्चारण करने मात्र से हमारी प्यास बुझती नहीं है, लेकिन भगवान के धाम में, आध्यात्मिक जगत में, जल शब्द कहने मात्र से प्यास बुझ जाती है। एब्सोल्यूट सब कुछ वहां आध्यात्मिक स्तर है, इसका मतलब है आध्यात्मिक। तो भगवान की लीलाओं को देखने में और सुनने में कोई अंतर नहीं। तो देवी देवतागण इतने दूर दूर से अपने अपने ऊपरी लोकों से भगवान की लीला का दर्शन करने आते थे। तो हमें अपने अपने घरों से यहीं बेलगाम शहर में एक दो मील यहां आने में, भगवान की कथा श्रवण करने में कोई नुकसान नहीं है, कोई ज्यादा परिश्रम नहीं है, कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है। तो जब इतने दूर दूर से ये बड़े बड़े देवी देवता, इतने शक्तिशाली देवगण कृष्ण की लीला देखने आते थे, तो हमें भी तो सुबह यहां मंदिर में कृष्ण कथा सुनने के लिए आना चाहिए। ब्रह्मांड के कोने कोने से ऋषि मुनि भागवत सुनने आए, जब परीक्षित महाराज बोल रहे कुछ सुन रहे थे, तो हमें भी अपने अपने घरों से रोज यहां आने का प्रयत्न करना चाहिए श्रीमद् भागवत को सुनने के लिए। तो ये बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि हमें बता रहे हैं कि हमें कितना आतुर होना चाहिए श्री कृष्ण की लीला और उपदेश को सुनने के लिए। श्रवण कीर्तन ही सबसे बड़ा मार्ग है इस कलयुग में, और सबसे सरल मार्ग है, सुलभ है, और सबसे ऊंचा पद प्रदान करने वाला मार्ग है। तो देवी देवतागण कभी भी ऐसे लीला नहीं देख चुके थे, इसलिए सारे आकर वहां भीड़ लगाते थे बादलों के पीछे। और बादलों के पीछे नहीं भी होते, अगर खुले ही ऐसे खड़े होते, फिर भी पृथ्वी लोक के लोगों को देख नहीं सकते, क्योंकि हमारे आंखों में वो दृष्टि नहीं है जिससे कि हम ऊपर के लोगों के निवासियों को देख सकें। उनके लिए भी हमें विशेष आंखें चाहिए। इस ब्रह्मांड के ऊपर के लोक के निवासियों को देखने के लिए अगर हमें विशेष आंखें चाहिए, तो आध्यात्मिक जगत को, भगवान को देखने के लिए भला हमें ये साधारण आंखें कैसे उपयुक्त हो सकती हैं? उसके लिए भी हमें दिव्य चक्षु चाहिए। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेम के अंजन हमारे जब नेत्रों पर लगाए जाते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समझ सकते हैं, श्रवण उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये जब कृष्ण कथा चलती है तो इसका श्रवण भी हमें श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से करना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि कथा में और दर्शन में अंतर नहीं है। अगर श्री कृष्ण हमारे आंखों के सामने ये लीला कर रहे होते तो क्या हमारा मन भटक जाता? क्या हम क्लास में कभी सो जाते? नहीं। तो हमें उतना ही आतुर होना चाहिए, उतनी ही श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से ये कथा का श्रवण हमें करना चाहिए। तो ये देवी देवता कौन सी लीला देख रहे हैं जिसके लिए वो भाग भाग कर वहां से इतने दूर दूर से आए, अपना सारा भोग छोड़कर? स्वर्ग लोक में कितना भोग उपलब्ध है इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। केवल सुनने मात्र से हमारा सर चकरा जाएगा, इतने भोग की सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं, और इन सब को छोड़कर देवी देवता ये कृष्ण लीला देखने के लिए आए हैं। तो आइए सुनते हैं शुकदेव गोस्वामी कैसे वर्णन करते हैं। क्वचित गायति गायत्सु मदान्धालिश्वनुव्रतैः उपगेयमान चरितः पथि संकर्षणान्वितः। क्वचित कभी कभी, मद अंध आलिशु, अली मतलब मोहम्मद अली, कौन अली मतलब भवरे, अलीशु मतलब बहुवाचा, तो भवरे उनका वर्णन कर रहे हैं यहां पर। मद अंध, सबसे पहले मद शब्द का मतलब है मदोन्मत्त हुए थे, नशे की अवस्था में थे ये सारे भवरे। भवरों का नशा क्यों हो गया था? पहली बात तो सुंदर सुंदर पुष्प जो वहां वृंदावन के वन में थे, जैसे कि कमल इत्यादि, उनका अमृत का पान करते थे वो, और इतना अमृत का पान करते थे कि उसमें नशा चढ़ जाता था उनको। लेकिन नशा चढ़ने का दूसरा कारण यह था कि वो कृष्ण की संगति में थे, कृष्ण के संगत में आकर भी उनको प्रेम का नशा चढ़ गया, मदोन्मत्त, और इसलिए ऐसे नशे में झूम रहे थे। आपने देखा होगा एक साधारण आदमी जब नशे में झूमता है सड़क पर, ऐसे बेलगाम में काफी दिखाई पड़ते हैं, शराब के प्रभाव में आकर सड़क पर झूमते हुए क्या करते हैं? गाते हैं ना। जब आदमी नशे में होता है तो गाता है, कुछ भी बकबक गा रहा हो लेकिन गाता है। तो भगवान के भक्त जब प्रेम में उन्मत्त होते हैं, कृष्ण भक्ति में उन्मत्त हो जाते हैं, तो वो भी गाते हैं। तो ये भौरे हैं, ये भी भगवान के भक्त है ना, तो वो भी गा रहे थे गायत्सु। और जब गा रहे हैं तो कैसे, जब आदमी गाता है बड़े मग्न होता है गाते हुए, तो क्या करता है? आंखों को बंद करता है ना, जब तान लगाता है, सुर लगाता है, तो आंखें बंद करके बड़े भाव में गाता है ना। तो ये भौरे भी मद अंध, अंध मतलब आंख बंद कर दिए थे। कृष्ण प्रेम के प्रभाव में आकर ये भौरे भी आंख बंद करके बड़े तान लगाकर गा रहे हैं गायत्सु, और कृष्ण भगवान ये देख रहे हैं। तो देखकर कृष्ण भगवान क्या करते हैं? गायती, वो भी गाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कृष्ण का गायन, कृष्ण की कथा का गायन कीर्तन, ये कृष्ण को प्रसन्न करता है, और कृष्ण इतने आकर्षित हो जाते हैं स्वयं उनकी कथा सुनकर कि वो भी कथा करना शुरू करते हैं। मतलब कृष्ण कथा कृष्ण को भी आकर्षित कर सकता है, ये है कृष्ण कथा की शक्ति। कृष्ण का सौंदर्य इतना है क्योंकि कृष्ण शब्द का अर्थ ही है सर्व आकर्षक। कृष्ण तो सबको आकर्षित करते हैं, यहां तक कि कृष्ण भगवान खुद अपने सौंदर्य से आकर्षित हो जाते हैं। ये भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रतिबिंब देखा रत्नों के दीवारों में, तो आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये कौन सुंदर व्यक्ति है, इतना सौंदर्य। तो कृष्ण इतने सुंदर हैं कि अपने सौंदर्य से भी वो आकर्षित हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये कैसे संभव है कि कोई इतना सुंदर हो। और वो रहे द्वारका के कृष्ण, और द्वारका के कृष्ण से ज्यादा सुंदर है वृंदावन के कृष्ण, क्योंकि वृंदावन के कृष्ण में वो मिठास है, अधिक मिठास है, माधुर माधुर मधुर भाव है उसमें। तो उसी तरह से कृष्ण अपने कथा को सुनकर भी आकर्षित हो जाते हैं, और इसलिए भंवरों को अपने कथा का गान करते हुए सुनकर कृष्ण भगवान भी गाने लगे। इसलिए यहां क्वचित गायति गायत्सु, तो जैसे भंवरे गाते थे कृष्ण भगवान भी गाने लगे। अभी यहां पर सुखदेव गोस्वामी गायति शब्द का प्रयोग करते हैं। गायति वर्तमान क्रिया का प्रयोग किया है सुखदेव गोस्वामी ने, मतलब वो कह रहे हैं क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी भगवान गा रहे हैं, लेकिन भंवरे तो उस समय गा रहे थे। यह भूतकाल का वर्णन है, जो हो चुका है उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। फिर वर्तमान क्रिया का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब है कि ये सारी भगवान की लीलाएं नित्य हैं, नित्य लीलाएं, शाश्वत लीलाएं, हमेशा ब्रज में होती रहती हैं। जिनके आंखें हैं वही देख सकते हैं, जिनकी आंखें नहीं है वो नहीं, वो क्या देखेंगे, वही सड़क, वही रिक्शा वाले, वही पंडा जो पीछा करते हैं दक्षिणा के लिए। लेकिन जिनकी आंखें हैं ये सब चीजें देख सकेंगे कि कृष्णा तान मितान लगाकर गा रहे हैं भंवरों के साथ में। और फिर आगे अनुव्रत उपगीयमाना चरित, और उनके अनुव्रत मतलब कौन, उनके जो ग्वाल बाल मित्र हैं वो क्या कर रहे हैं, उपगीयमान गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं, सिनेमा के गाने नहीं गा रहे हैं, चरित्र, कृष्ण के चरित्र गा रहे हैं, कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। और पथि संकर्षण अन्वित, और उस पथ में संकर्षण बलराम जी भी साथ में चल रहे हैं। तो ये सुंदर दृश्य की कल्पना कीजिए, कृष्ण है, बलराम है, ग्वाल बाल है, गौवें आगे जा रहे हैं, और भंवरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं श्री कृष्ण के और बलराम जी के, और भंवरे मस्त होकर अपने आंखों बंद करके कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, अपनी भाषा में कर रहे हैं। लेकिन भगवान तो सब भाषा समझते हैं ना, भगवान को कोई सीमा नहीं है कि एक ही भाषा में बोलना है। तो भगवान भंवरों की भाषा भी समझते हैं, तो वो अपनी भाषा में गुणगान कर रहे हैं आंखें बंद करके मस्त होकर, और कृष्ण भगवान भी गा रहे हैं उनके साथ में ताल में ताल मिलाकर, और चल रहे हैं पथ में, ग्वाल बाल भी उनके गुणगान कर रहे हैं। बड़े सुंदर दृश्य है, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। और फिर आगे और क्या क्या लीला कर रहे हैं और क्या चलता है, अनुजल पतिजल पंतम कल वाक्य शुकम क्वचित क्वचित सवलगो खूजंतम अनुकूजति कोकिलम। शुकम भंवरों के बाद में वो देखते हैं शुक, शुक मतलब तोता, तोते को देखते हैं, तोता क्या कर रहा होता है, कल वाक्य ही बड़े मधुर ढंग से कभी कभी टूटे टूटे शब्दों में क्या कर रहा है, जलपंतम, जलपंतम मतलब वो बोल रहा है अपनी भाषा में, बोल रहा है, बकबक कर रहा है, तोता जैसे जैसे बोलता है वैसे। तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, अनुजलपति अनुजलपंतम, वो नकल करते हैं तोते की। तो तोते कैसे बोल रहे हैं कुछ, तो कृष्ण भगवान भी उनकी नकल करते जा रहे हैं। और फिर आगे चल के और क्या हो रहा है, कोकिलम कोयल, कोयल क्या कर रहे हैं, सवलगु कूजंतम, सवलगु मतलब बहुत मनोहर तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से मधुर स्वर में वो अपना कूजन कर रहे हैं। कूजन जब वो करते हैं तो कृष्ण भगवान ये कुहू कुहू के आवाज को सुनकर बड़े आकर्षित हो जाते हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, अनुकूजति वो भी कूजन करना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार से कोयल कुहू कुहू करते हैं, कृष्ण भगवान की उनकी नकल करते हैं। एक कोयल को देखा, कोयल ने कुहू किया, कृष्ण भी कुहू कुहू करने लगते हैं। पथ में चल रहे हैं सब, वन के अंदर ये सब चल रहा है, और साथ साथ ग्वाल बाल तो उनका कीर्तन कर ही रहे हैं। तो देखिए सुखदेव गोस्वामी इस तरह से वर्णन करते हैं जैसे कि ये सारा दृश्य हमारी आंखों के सामने प्रकट हो जाता है, मानो कि हम प्रत्यक्ष इस दृश्य को देख रहे हैं। इसलिए जो महाभागवत होते हैं वो सुंदर कवि भी होते हैं। शुद्ध भक्त वैष्णव के 26 गुण बतलाए गए हैं शास्त्रों में। वैसे अनंत गुण होते हैं लेकिन 26 प्रमुख गुण बताए जाते हैं, उनमें से एक है कवि। बड़े काव्यात्मक ढंग से कृष्ण की लीलाओं को, उपदेश को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो सुखदेव जी गोस्वामी भी बहुत सुंदर कवि हैं, इतने सुंदर ढंग से ऐसे सब कुछ समझा रहे हैं कृष्ण की लीला को। फिर और क्या करते थे भगवान श्री कृष्ण? क्वचिच्च कलहंसानां अनुकूजति कूजितम् अभिनृत्यति नित्यन्तम् बर्हिणम् हासयन् क्वचित्। क्वचित तो कभी कभी, कलहंसानां कूजितम्, कलहंसानां मतलब हंस, क्योंकि पास में सरस, पास में ये तालाब नदी वगैरह हुआ करती थी, तो उनमें ये हंस तैरते थे, और ये हंसों का भी कूजन हुआ करता था। वो अपने स्वर में सुंदर सुंदर ढंग से बोला करते थे, तो इसको देखकर भगवान श्री कृष्ण भी वो कूजन की नकल करते थे। अनुकूजति कूजितम, हंसों के आवाज का भी नकल कृष्ण भगवान करते थे। तो सारे पक्षी पशु जो भी थे, भगवान श्री कृष्ण उन सुंदर आवाजों को सुनकर उनकी नकल करते थे। हमारे शहरों में नकल करने के लिए क्या आवाज है? केवल गाड़ियों की पॉम पॉम और बाकी सब हल्ला गुल्ला। तो बच्चे भी यही सब नकल करना शुरू कर देते हैं बचपन से ही। आप देखेंगे कि बच्चे होते हैं मोटरसाइकिल करके आवाज करेंगे घर में जब खेल रहे होते हैं, गाड़ी की आवाज। बच्चों की आदत है, जो वो सुनते हैं वो नकल करते हैं। तो बच्चे फिर आजकल केवल मोटर गाड़ी मोटरसाइकिल इसकी नकल करते रहते हैं, और बंदूक की आवाज वो बहुत पसंद करते हैं बच्चे, बड़बड़ गड़गड़ जैसे मानो कि वो कोई युद्ध लड़ रहे हैं। तो बंदूक की आवाज टीवी पर देखते हैं, सिनेमा में देखते हैं कैसे गोली चला रहे हैं लोग। तो आजकल के संस्कार देखिए, और पहले के जमाने के जैसे कृष्ण के समय में जो थे वो नकल करते थे हंस की, कोयल की, तोते की, भंवरे की। देखिए कितना फर्क पड़ गया उस काल में और आजकल के जमाने में। और फिर क्वचित कभी कभी बरहिणम, बरही मतलब पीकॉक, मयूर, मोर। तो मोर जो है बरहिणम मतलब कई मोर, वो क्या करते थे? नित्यंतम। हम पहले देख चुके हैं कि मोर जब श्री कृष्ण को देखते थे तो मुदा मुदित होकर वो नृत्य करने लगते थे। तो कृष्ण भगवान भी क्या करते थे? अभिनृत्यति, वो भी नृत्य करना शुरू करते थे, उनकी नकल करते थे। और कभी कभी इतने जोर से नकल करते थे, बड़े उत्साह से वो नृत्य करने लगते और नकल करते, अपनी गर्दन भी एक अजीब तरह से हिलाते जैसे मोर हिलाता है। और इसको देखकर हासयन, तो ग्वाल बालों को हंसी आ जाती थी, जोर जोर से हंसने लगते थे। सनातन गोस्वामी पाद बताते हैं कि कभी कभी श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों को कहते कि अरे देखो ये मोर को नाचना ही नहीं आता, तो मैं नाच के सिखाता हूं। और फिर वो मोर को सिखाते थे कैसे नाचना चाहिए, फिर अपना गर्दन हिलाते थे और सारे बच्चे ताली मारकर बड़े जोर जोर से हंसने लगते थे। उनका धूमधाम, बड़ा मनोरंजन होता था उनका। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण मोर के नृत्य का नकल बार बार करते थे। ये बाद में होने वाली लीला की बात है, लेकिन क्योंकि प्रसंग मोर की नाच की चल रहा है तो यह भी बताना उचित रहेगा कि कभी कभी भगवान मोर के साथ में स्पर्धा करते थे। बरसाना, बरसाना मतलब श्रीमती राधा रानी का गांव है, वहां पे एक जगह भगवान श्री कृष्ण ने एक मोर के साथ में नृत्य करने की प्रतियोगिता में शामिल किया, दोनों प्रतिद्वंद्वी थे, और श्रीमती राधा रानी वहां उस खेल की निर्णायिका थी कौन श्रेष्ठ नाच रहा है, और वो जगह को मोर कुटीर कहते हैं, अभी तक बरसाना में है। और कभी कभी जब भगवान श्री कृष्ण मोरों के बीच में नाचते थे तो मोर इतने प्रसन्न हो जाते थे, बहुत खुश हो जाते थे कृष्ण के ऊपर। एक बार इन मोरों ने कृष्ण भगवान को अपना पंख दिया और तब से भगवान ने अपने बालों में पंख पहनना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से भगवान अलग अलग पशुओं का वगैरह नकल करते थे। तो और आगे चलकर और किन पशुओं के साथ में लीला करते थे? खुद अपने गायों के साथ में। कैसी लीला करते थे अपने गायों के साथ में? मेघ गंभीर या वाचा नाम भी दूरगान पशुन क्वचित आह्वयति प्रीत्या गो गोपाल मनोज्ञया। जब वो गायों को चराने ले जाते थे दूरगान पशुन क्वचित, कभी कभी अगर ऐसे कोई पशु कोई गाय होते जो झुंड से कहीं दूर अकेले चले गए हों, सारे पशु एक जगह चर रहे हैं और एक पशु दो कहीं और इधर उधर दूर चले गए, तो उस समय भगवान क्या करते थे? आह्वयति, उनको बुलाते थे। कैसे बुलाते थे? हम देखते हैं कभी कभी लोग बैलगाड़ी चलाते हैं या गायों को ले जाते हैं, काफी क्रूर तरह से उनको डांटते हैं या बोलते हैं, लेकिन कृष्ण कैसे बुलाते थे सारे गवों को जो कि इधर उधर चले गए थे? प्रीत्या, बड़े प्रेम से बुलाते थे। तो भगवान श्री कृष्ण की सारी चीजें हमें सीखनी चाहिए। जब हमारे यहां गौशाला होगा तो हमें भी ऐसे प्रेम से बुलाना चाहिए, ना कि उनको डांट कर बुलाना। गवों को कभी डांटना नहीं चाहिए। और इस प्रकार से गो गोपाल मनोज्ञया ऐसे सुंदर ढंग से बुलाते थे कि सबका मन हर लेते थे, केवल गोपगणों का नहीं बल्कि गवों का मन भी। गवें सुन लेते थे कि कृष्ण कितने सुंदर ढंग से बुला रहे हैं और उनका मन बिल्कुल मोहित हो जाता था। और जब बुलाते थे तो कैसे बुलाते थे? मेघ गंभीर या वाचा, बादलों की तरह गंभीर आवाज में। तो कृष्ण भगवान की आवाज इस उम्र में भी इतनी सुंदर थी, मधुर थी, तो ऐसे आवाज में वो बुलाया करते थे सारे गवों को जो कि बिछड़ गए थे, इधर उधर गए थे। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी से भी बुलाया करते थे गवों को, और कभी कभी बोलकर उच्चारण करके। और किस तरह से बुलाते थे? नाम भी, प्रत्येक गाय को अपने अपने नाम से पुकार के बुलाते थे। नंद महाराज के कितने गाय थे? 9 लाख। और इन 9 लाख गायों में से प्रत्येक गाय का नाम श्री कृष्ण जानते थे। वैसे श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं, केवल उन 9 लाख गायों का नहीं, ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने भी गाय हैं उन सब का नाम जानते हैं। सारे प्राणियों का इतिहास, भूतकाल भविष्यकाल सब जानते हैं। तो उनके लिए 9 लाख गायों का नाम जानना कौन सी बड़ी बात है। और हरेक गाय को अच्छे बड़े प्रेम से बुलाते थे। और फिर गाय जो है वो उसका प्रतिसाद करते थे। जब वो देखते थे कि कृष्ण बुला रहे हैं तो वो भी अपनी आवाज में रंभना शुरू कर देते थे। उनके प्रेम से बड़े जिस ढंग में बुलाते हैं तो वैसे वो भी बोलने लगे कृष्ण को अपनी भाषा में। कृष्ण को गवों की भाषा भी समझते हैं तो वो भी सुनने लगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि कृष्ण भगवान के 9 लाख गायों के 108 दल थे। 4 रंग में उनके गाय होते थे, एक काले रंग के थे, दूसरे सफेद रंग के, तीसरे लाल रंग के और चौथे पीले रंग के। तो काले रंग के 25-25 दल थे झुंड, और हरे जो 4 रंग के थे ऐसे 25-25-25-25 तो हुए 100 दल यहीं पर हो गए। और फिर बाकी जो 8 हैं वो और अन्य जो झुंड थे, जैसे कि किसी के कोई मृदंग जैसा मुख था, मृदंग मुखी, कोई सिंह मुखी, किसी के कपाल पे जो है तिलक की निशानी थी, तो ये अलग अलग झुंड 8 थे। तो अगर कोई काले रंग वाले कोई गायों को उनको बुलाना था तो बुलाते, हे श्यामला, हे धूमला, हे यमुना, तो वो दल के जो गाय हैं सारे चले आते थे। और अगर सफेद रंग के कोई गायों को बुलाना होता था, हे हंसी, हे चंदनी, हे धूमला, हे धवली, हे गंगा, हे मुक्ता, ऐसे अलग अलग नाम उनकी हुआ करती थी। और लाल रंग की जो गायें थी, हे अरुणी, हे कुमकुम, हे सरस्वती, तो सब सुनते थे, जहां भी कहीं भी हो वो सुनने लगती थी। और जो पीले रंग के गाय थे, फिर वो उनको बुलाते थे, हे पीता, हे पिंगला, हे हरितालिका, ऐसे सब नाम उनके हुआ करते थे। और जिनके कपाल में तिलक की निशानी थी तो उनको बुलाते थे, हे चित्रिता, हे चित्र तिलका, हे दीर्घ तिलका, हे मृदंग मुखी, हे सिंह मुखी, ऐसे अलग अलग नाम हुआ करते थे सारे गवों का। और जो भी गाय इधर उधर भटक गई है पहचान जाते वहां, वो कौन है, वो नंदिनी है, वो मुक्ता है, वो चंदनी है, और बुलाते। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सुंदर ढंग से सारे गांव को, सारे गवों को बुलाते हैं। ये तो भगवान की नित्य क्रिया है, उनके धाम में भी यही काम करते हैं भगवान श्री कृष्ण, इसलिए उनको नाम गोपाल रखा गया है। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृते सुरभिरभिपालयन्तम्। वो चिंतामणि धाम में जहां की सब कल्प वृक्ष है और जहां की लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, इतने सारे लक्ष्मी, कोटि कोटि लक्ष्मी देवियां भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती हैं, सुरभीर अभिपालयंतम, श्री कृष्ण इन सुरभि गायों का पालन करते हैं, अभिपालयंतम। तो ये है वृंदावन, और गायों को चराना कृष्ण भगवान का नित्य कार्यक्रम है रोज। और फिर आगे और भी कई पक्षियां वगैरह थी जिनके बारे में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। चकोर क्रौंच चक्राह भारद्वांश बर्ण अनुरोतु स्म सत्वान भीतवद व्याघ्र सिंहयो। अनुरोतु स्म, फिर भी नकल करने लगते थे सारे पक्षियों की आवाज की, कौन से पक्षियां वहां हुआ करती थी ब्रज में, चकोर, क्रौंच, चक्राह, भारद्वाज, बरहिणी, बरही मतलब मोर, तो ये सब अलग अलग पक्षी वहां हुआ करते थे। यहां हम लोग चिड़िया और कौवे छोड़कर और कोई पक्षी तो देखते ही नहीं है, लेकिन वहां इतने इतने सारे पक्षी जिनके नाम बताए गए हैं, जिनको हम जानते भी नहीं, ऐसे पक्षी जिनका नाम भी शायद हमने सुना भी नहीं होगा। भारद्वाज भी एक पक्षी है, क्रौंच, चक्राह, ऐसे सुंदर सुंदर पक्षी अपने अपने मधुर बोली में बोलते थे और श्री कृष्ण उनकी नकल किया करते थे। और फिर क्या करते थे, भीतवत सत्वानाम, जो छोटे छोटे पशु हुआ करते थे जैसे खरगोश इत्यादि, कभी कभी शेर सिंह के डर से भाग जाते थे अचानक। वैसे वृंदावन में शेर और सिंह भी हिंसा नहीं करते थे क्योंकि वो ब्रज है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये छोटे पशु डर के मारे भीतवत भाग जाते थे। तो जैसे भाग जाते कृष्ण, बलराम और गोपगण उन पशुओं के साथ साथ में वो भी भाग जाते, मानो कि वो भी डर गए, केवल एक लीला करते थे वो, जैसे बच्चे कभी करते हैं हंसी मजाक में भाग जाते हैं, झूठा झूठा भय व्यक्त करते थे और भाग जाते थे उन पशुओं के संग में। तो ऐसी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण करते थे। और जब पक्षियों की नकल करते थे आवाज की, उस समय कभी कभी अलग अलग पक्षियों की अलग अलग समय नकल करते थे, जैसे अभी कोयल की आवाज निकाल ली, अभी चकोर की, अभी क्रौंच की। लेकिन कभी कभी क्या करते थे कि सारे पक्षियों की आवाज एक ही साथ अपने मुंह से निकालते थे। बोले ये संभव है? मान लीजिए हम किसी कुत्ते की नकल कर रहे हैं, आवाज की भौं भौं कर रहे हैं, तो वो बंद कर लिया तो किसी बिल्ली की आवाज का म्याऊं म्याऊं शुरू कर लिया, हम नकल कर सकते हैं, लेकिन दोनों भौं भौं और म्याऊं म्याऊं एक साथ में एक आवाज में आप बोल सकते हैं? नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये सारे पक्षियों की आवाज एक साथ में एक ही समय एक ही क्षण किया करते थे। वो भगवान है, उनके लिए क्या असंभव है। तो इस प्रकार से आचार्यों ने ऐसी लीलाओं को विस्तारित रूप में यहां समझाया है। और इतने सब
लीला करके भाग दौड़, अल्ला गुल्ला, खेल कूद करते हुए कभी कभी थक जाते थे। वैसे भगवान कैसे थक सकते हैं, उनका तो आध्यात्मिक शरीर है, लेकिन फिर भी एक बाल लीला कर रहे हैं, इतना खेल कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, तो थक भी जाते हैं। तो यह सुखदेव गोस्वामी वर्णन करने जा रहे हैं कि जब बलराम जी थक जाते थे तो क्या होता था।
क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतम गोपोत्संगोपबर्हणम स्वयं विश्रमयत्यार्यम पाद संवाहनादिभिः।
आर्य बलराम जी को आर्य बताया गया है, बड़े भाई। तो जब क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतम, क्वचित कभी कभी, आर्य जब बलराम जी थोड़े श्रमित हो जाते, श्रम के मारे थक जाते थे, तो वो क्या करते थे, भगवान श्री कृष्ण स्वयं विश्रमयति, उनके थकावट को दूर करने के लिए प्रयास करते थे। श्री कृष्ण बलराम की थकावट को दूर करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण क्या क्या करते थे, पाद संवाहन आदि भी, उनके बलराम जी के चरणों को दबाते थे, मालिश करते थे, कभी शरीर के अन्य अंगों को भी दबाते थे, मालिश करते थे आदि भी, मतलब और अन्य कार्य भी करते थे जिससे कि उनकी थकावट मिट जाए। जैसे कि कभी थोड़ा सा जल छिड़कते थे, कभी हवा चामर मोर पंख से उनको हवा देते थे, कभी कभी थोड़े कुछ खाने के लिए पदार्थ देते थे, और थोड़े ग्वाल बाल जो थे वो उनके साथ में बैठकर वहां नृत्य करते थे। और इस प्रकार से कृष्ण भगवान कभी कभी बलराम जी को अपने भाई, बड़े भाई मानकर स्वीकार करते थे, तो कभी कभी अपना हम उम्र के सखा मानकर। तो यहां कृष्ण भगवान बलराम जी की सेवा कर रहे हैं इस प्रकार से। देखते हैं इसमें चित्र है या नहीं, है जो श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं, जहां श्री कृष्ण बलराम जी के पैर चरणों को दबा रहे हैं, बड़ा सुंदर दृश्य। और अन्य ग्वाल बाल भी इर्द गिर्द बैठे हैं, वो भी अपनी अपनी तरह से सेवा कर रहे हैं। और आगे और किस प्रकार से अन्य ग्वाल बालों ने लीला किए, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। वैसे जब बलराम विश्राम कर रहे होते थे तो कई बार थोड़े लोग उनकी सेवा करते और थोड़े ग्वाल बाल दूर जाके वो कुश्ती शुरू कर देते या वो अपनी लीला आरंभ कर देते। तो कृष्ण भगवान थोड़ी देर मालिश करने के बाद देखते कि अभी सब वहां लीला चल रही है, तो फिर उनके पास जाते और उनके हाथ पकड़कर हंसने लगते और उनके साथ भी लीला करने लगते।
नित्य तो गायत क्वापि वल्गतो युध्यतो मिथ गृहीत हस्तौ गोपालान हसंतौ प्रशशंसतुः।
तो कभी कभी ये जो ग्वाल बाल हैं गोपालान, वो क्या करते, नृत्य तो नृत्य करते, कभी कभी गायतः गाते, और कभी कभी वलगतो इधर उधर जाते, और कभी कभी युद्ध तो युद्ध करते, मतलब कुश्ती करते, एक दूसरे के मुक्का प्रहार करते, ऐसे मजाक में मिथ आपस में। तो उस समय कृष्ण और बलराम गृहीत हस्तो हसंतो, कृष्ण बलराम के हाथ लेकर फिर ग्वाल बालों की लीला देखते थे। और उस समय कभी कभी जब कोई खेल क्रीड़ा होती थी, कोई प्रतियोगिता स्पर्धा होती थी ग्वाल बालों के बीच में, तो कृष्ण और बलराम उस खेल के निर्णायक बनते, रेफरी। कभी कभी ये लोग क्या करते, कूदते, एक रस्सी पकड़ के रख लेते और फिर थोड़े ग्वाल बाल उसके ऊपर कूदते, कोई कूद सकते थे, कोई रस्सी को फिर पैर लग के गिर जाते, सब लोग हंसते। फिर कृष्ण बलराम बोलते, नहीं नहीं तुम फेल हो गए, ये पास हो गए, हाँ इसने कूद लिया। तो सारे जो ग्वाल बाल थे अपनी अपनी कला दिखाते थे कृष्ण बलराम को, देखो मैं कितनी तरह से अच्छी तरह से नाच सकता हूँ, मैं कितनी अच्छी तरह से गा सकता हूँ। और फिर कृष्ण भगवान बलराम जी क्या करते, प्रशंसतु, प्रशंसा करते, अरे वाह तुम तो वाकई बहुत अच्छा नाचते हो, विद्याधर लोक में भी विद्याधर ऐसे नहीं नाच सकते, अरे तुम इतना अच्छा कीर्तन करते हो, गाते हो, तुम्हारे अंदर जो कला है वो गंधर्व लोक में भी नहीं है, विद्याधर लोक में भी वहां जो निवासी हैं सुंदर नृत्य करते हैं, और गंधर्व लोक के निवासी सुंदर गीत गा सकते हैं, भगवान ने उनको विशेष शक्ति दी है। तो कृष्ण भगवान उनको बोलते कि वाह, गंधर्व और विद्याधर तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। तो ग्वाल बाल प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण भगवान और बलराम जी वहां ग्वाल बालों के संग में ऐसे लीला कर लेते हैं। और कभी कभी कृष्ण भगवान थक जाते थे, तो कृष्ण भगवान क्या करते थे थकने के बाद, यह सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। वास्तव में ये भी भक्ति रसायन श्लोक है। आपको याद होगा कल हम वर्णन कर रहे थे कि श्रीपाद सनातन गोस्वामी उन्होंने बृहत भागवतामृत नाम के ग्रंथ में 63 ऐसे श्लोकों का वर्णन किया है श्रीमद् भागवत से और ब्रह्म संहिता से, जो कि भक्ति के रस के वर्धक हैं। और इनको, इन 63 श्लोकों को सनातन गोस्वामी ने भक्ति रसायन कहा है, टॉनिक, भक्ति को बढ़ाने वाला टॉनिक, जिसका पान करने से हमारी भक्ति बढ़ जाती है। तो ये भी अभी जो पढ़ने जा रहे हैं ये भी उनमें से एक है। और यहां क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, क्वचित पल्लवतल्पेषु नियुद्धाश्रमाकर्षितः वृक्षमूलाश्रयशेते गोपोत्संगोपबर्हणः। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, क्वचित कभी कभी, नियुद्ध श्रम कर्षितः, युद्ध करने के बाद, कुश्ती खेल क्रीड़ा करने के बाद वो श्रम से कर्षितः कभी थक जाते थे। तो थकने के बाद वो क्या करते थे, वृक्ष मूलाश्रयः शेते, शेते मतलब लेट जाते थे, कहां, वृक्ष के मूल पर, वृक्ष की छाया में नीचे वहां लेट जाते थे। लेकिन लेटने के लिए उनकी शैया कौन सी थी, पल्लव तल्पेशु मतलब पल्लवों की, अंकुरों की, कलियों की, फूलों की, पत्तों की वो शैया बनाते थे उनके ग्वाल बाल मित्र। और जब कृष्ण थक जाते थे और उनको थोड़े बहुत लेटने की इच्छा हो जाती तो तुरंत सारे ग्वाल बाल अपने अपने काम में लग जाते। 3-4 ग्वाल बाल जल्दी जल्दी से पल्लवों की, पत्तों की, फूलों की ऐसे शैया बनाते, बहुत सुंदर कोमल, हमारे डनलो पिलो से भी बहुत अच्छा। आजकल जो लोग सोते हैं ऐसे डनलो पिलो इत्यादि, इसमें पीठ का दर्द, फिर ये समस्या वो समस्या, लेकिन देखिए वन में भगवान श्री कृष्ण कैसे सुंदर प्राकृतिक शैया के ऊपर लेटते और बड़े आनंद से सो जाते। यहां डनलो पिलो में सोने के बाद फिर हमारे संसार की समस्याएं, नींद नहीं आती, गोली लेने पड़ते हैं, लेकिन यहां कृष्ण भगवान आराम से पल्लव तल्पेशु उस पर सोए हुए थे। यहां तल्पेशु बहुवचन है, मतलब भगवान तो एक है तो पल्लव तल्प कहना चाहिए था कि पल्लवों का एक बिस्तर शैया, लेकिन शैयाएं, कई शैयाएं, क्यों, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य का एक बहुत विशेष रूप प्रदर्शित किया। वो क्या था, भगवान सारे ग्वाल बालों की सेवा स्वीकार करना चाहते थे और सारे ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के लिए शैया बनाना चाहते थे। 3-3, 4-4 बच्चे एक शैया को बनाते थे, लेकिन उनके साथ में कितने हजारों ग्वाल बाल थे तो सबको कैसे संतुष्ट कर सकते थे। तो आचार्य समझाते हैं कि उन्होंने अपने आप को विस्तृत कर लिया, लेकिन ये ऐश्वर्य का प्रदर्शन ग्वाल बाल नहीं समझ पाए। ग्वाल बाल सोचते थे कि मैंने कृष्ण के लिए शैया बनाया है, हम तीनों ने, और कृष्ण हमारे शैया पर लेटे हैं। हर ग्वाल बाल ऐसे सोचता था, वो नहीं देख सकता था कि कृष्ण उधर भी सोए हुए हैं, उधर भी सोए हुए हैं, उधर भी सोए हुए हैं। कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया और हरेक ग्वाल बाल की सेवा स्वीकार की, सभी को संतुष्ट किया और बड़े प्रेम से शैया बनाने के बाद उनको कृष्ण को बोलते आओ अभी सो जाओ। विस्तरित रूप अलग अलग शैयाओं में सो जाते हैं, इसलिए यहां पर पल्लव तल्पेशु। तो शैया तो तैयार हो गई लेकिन तकिया भी चाहिए ना। तो तकिया क्या था कृष्ण भगवान के लिए? तकिया तो अपने घर से नहीं ले जाते, तो क्या गोप उत्संग उपबरहण, मतलब गोप के किसी ग्वाल बाल के गोदी को तकिया बना लेते हैं और इस प्रकार से आराम से सो जाते। ये है असली जीवन। वन में जाओ, गायों को चराओ और फिर पल्लव पल्लवों के शैया पर लेट जाओ, खाओ पियो नाचो कूदो। ये ग्वाल बालों का जीवन था। और क्या चाहिए जीवन में, वो भी कृष्ण के साथ में ग्वाल बाल थे, तो उनको कितना आनंद था क्या हम कल्पना कर सकते हैं? आप सब जाना चाहते हो उनके संग में, मन होता है ना कि हम भी जाएं इस संसार में, झंझट सुबह से रात को झंझट, ये समस्या वो समस्या, ग्वाल बालों को कोई समस्या नहीं, कृष्ण के साथ में खेल रहे हैं, एक के बाद एक नए नए ऐसे चीजें खेल खेलते रहते हैं। और फिर एक बार कृष्ण भगवान लेट जाते तो फिर और किस तरह से उनकी सेवा करते ग्वाल बाल? पाद संवाहनम चक्रु केचित् तस्य महात्मनः अपरे हत पाप्मानो व्यजनहि समवीजयन्। थोड़े ग्वाल बाल उनमें से जो महात्मा थे, महात्मनः केचित कभी वो क्या करते थे, वो पाद संवाहनम चक्रहु, वो उनके चरण कमलों को दबाते थे जब कृष्ण लेट जाते थे। केचित कई उनमें से थोड़े ग्वाल बाल पैर दबाना शुरू करते थे। अपरे और दूसरे थोड़ी और थोड़े ग्वाल बाल क्या करते थे, जो कि हत पाप मानो, जो कि पाप से बिल्कुल मुक्त हो चुके थे, ऐसे ग्वाल बाल व्यज नहीं समवीजयन, फिर वो पंखों से हवा देते थे भगवान श्री कृष्ण को। और किस प्रकार से हवा देते थे? विजयन अविजयन मतलब हवा देना, लेकिन समवीजयन सम्यक अवीजयन मतलब बिल्कुल सुंदर गति से, बहुत तेजी से करते तो ज्यादा हवा आ जाती, बहुत हल्के से करते तो कम हवा आ जाती, तो बिल्कुल सही गति से सही ऊपर नीचे कर रहे थे। कभी कभी हम प्रभुपाद जी को भी जब उनका क्लास होता है हम भी उनको चामर लेकर उनको हवा देते हैं, तो हमें भी उसी तरह से सही गति से सही ढंग से उनको पंखा चलाना चाहिए। कई बार भक्त क्या करते हैं, प्रभुपाद जी बैठे यहां यूं करते हैं, यूं यूं पंखा उस तरफ घुमा रहे हैं, प्रभुपाद जी बैठे हैं इधर, और कभी कभी हम पंखा घुमा रहे हैं तो घुमाते घुमाते ऐसे लग रहा है कैसे शरीर में जान नहीं है, या हम कहीं और कुछ सोच रहे हैं, क्या हो रहा है, पंखा चला रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो जब पंखा चलाते हैं तो बड़े ध्यान से, बड़े लक्ष्य ध्यान देकर, प्रेम से, हमें उचित ढंग से सही गति से भी उठाना चाहिए। और केवल एक कला का प्रदर्शन नहीं हो रहा है यूं घुमा के, जब हम जैसे आरती करते हैं, अगरबत्ती अर्पण करते हैं, तो कोई हाथों की कला का प्रदर्शन नहीं है, भक्ति भाव को अर्पण कर रहे हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि दिखता कैसे है, कि हम कितने ढंग से अच्छा ढंग से, भक्ति भाव से हमें करना ये जरूरी है, जैसे कि हम ग्वाल बाल सब कर रहे थे, सुंदर गति से पंखे को हिला रहे थे। और आगे और भी बहुत ग्वाल बाल थे, वो लोग क्या कर रहे थे, कृष्ण भगवान की सेवा कैसे कर रहे थे? अन्ये तद अनुरूपाणि मनोज्ञानी महात्मनः गायन्ति स्म महाराज स्नेह क्लिन्नध्यशनैः। अन्ये तो जो अन्य ग्वाल बाल थे वो क्या करते थे, गायन्ति जो अच्छे गा सकते थे, जिनमें और ज्यादा कला थी, वो लोग सुंदर सुंदर गीत गाते थे। कैसे गाते थे? मनोज्ञानी जो कि बहुत मन को आकर्षित करने वाला, ऐसे सुंदर ढंग से गाते थे, बेसुरे आवाज में नहीं गाते थे, बिल्कुल मधुर सुरीले स्वर में वो गाते थे। तद अनुरूपाणी, जो उस काल के लिए उस परिस्थिति के लिए उपयुक्त था वैसे गीत वो गाया करते थे। जैसे कि संगीत ये एक बहुत बड़ी विद्या है। अभी हम लोग तो अभी गा लेते हैं श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, क्योंकि भजन, क्योंकि हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि भगवान भक्ति पे ज्यादा जोर देते हैं। भले हम बेसुरा गाते हो, सुरीले स्वर में गा रहे हो, हमें प्रयत्न करना चाहिए जितना हो सके सुरीले स्वर में गाना, लेकिन फिर भी सबके अंदर तो वो कला उतनी नहीं है। थोड़े लोग अच्छा गा सकते हैं, थोड़ा नहीं गा सकते, लेकिन भगवान हमारी भक्ति देखते हैं, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए कि अरे हम तो नहीं गा सकते, वो तो गंधर्व की तरह गा रहे हैं। नहीं, गंधर्व की तरह भी गा रहे हों लेकिन अगर उनमें भक्ति भाव नहीं है तो भगवान वो स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन हम बिल्कुल बेसुरे आवाज में गा रहे हैं लेकिन भक्ति भाव से गा रहे हैं तो भगवान को उसे वो बहुत सुरीला लगता है, बहुत मधुर लगता है। तो भगवान के विश्लेषण करने की जो फॉर्मूला भगवान का है वो बिल्कुल अलग है हमसे। हाँ, प्रयत्न तो हमें करना चाहिए कि हम अच्छे ढंग से गाएं। तो भक्ति के संगीत, भक्ति के विद्या में, संगीत की विद्या में ये भी कई नियम होते हैं कि अलग अलग समय पर अलग अलग राग गाने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी संगीत किसी भी समय गाया जाए। प्रातः काल में एक राग, कई राग होते हैं, फिर आगे जब सुबह शुरू हो जाती है वहां और कोई राग, दोपहर के समय अन्य राग, शाम के समय अन्य राग, रात के समय अन्य राग, गर्मी में एक राग, बरसात में एक राग, जागते समय एक राग, सोते समय एक राग, अलग अलग चीजें होती थी। पहले राजाओं के साथ भी ऐसे होता था कि उनके सूत, मागध इत्यादि लोग होते थे, वो वाद्य इत्यादि बजाया करते थे उनको जगाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त राग में, और सोते समय भी उनको सुला देते थे। कई मंदिरों में भी ये किया जाता है, जैसे कि श्रीरंगम में जब जगाते हैं तो सुंदर वो वाद्य बजाते हैं, सुलाते समय भी ऐसे सुलाते हैं उनको। वृंदावन में भी जहां बाल गोपाल जी होते हैं उनको लोरी सुनाते हैं उस टाइम के, जैसे कि वो ताकि आसानी से वो सो जाएं। तो यहां कृष्ण सोने जा रहे थे, तद अनुरूपाणी, तो उनको नींद, उनके आराम के लिए, उनको जल्दी से नींद आने के लिए जो बिल्कुल उपयुक्त एक राग था वैसे ये ग्वाल बाल गाया करते थे। और कैसे गाते थे? यांत्रिक ढंग से नहीं गाते थे, स्नेह क्लिन्न धियः शनैः। और जैसे जैसे वो गाते थे उनका हृदय स्नेह से, प्रेम से पिघल जाता था। कितने सुंदर ढंग से सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है, स्नेह क्लिन्न धियः शनैः। क्लिन्न मतलब पिघल जाना, तो स्नेह मतलब प्रेम। लेकिन कैसा प्रेम? स्नेह शब्द स्नीयते इति स्नेह, स्नेह मतलब जो बहता है, तरल वस्तु को स्नेह कहते हैं। तो स्नेह को संस्कृत में वास्तव में क्या है? घी, तेल, इसको स्नेह कहते हैं। तो प्रेम को भी स्नेह कभी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारा हृदय भी पिघल जाता है और बहने लगता है हमारे हृदय में जो प्रेम है, तो उसको स्नेह कहते हैं। तो स्नेह ये प्रेम का एक बहुत ऊंचा स्तर है। यह संसार में प्रेम को एक साधारण ऐसे ही शब्द संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वास्तव में स्नेह तो वो गाढ़ा प्रेम है जिसमें हृदय पिघल जाता है। तो उस समय जब ये ग्वाल बाल श्री कृष्ण की सेवा कर रहे थे, सुंदर सुंदर गीत गा रहे थे, तो उनका हृदय बिल्कुल पिघल जाता आनंद से, प्रेम के मारे, और इस प्रकार से वो भगवान की सेवा करते थे। और खेलते खेलते और भी कई लीलाएं करते थे। कवि कर्णपुर आनंद वृंदावन चंपू में वर्णन करते हैं, गेंद के साथ में खेलना ये ग्वाल बाल बहुत पसंद करते थे। लेकिन वहां पर तो कोई खेल क्रीड़ा के दुकान नहीं होते थे जहां पे आप बैट बॉल खेल सब आप खरीद सकते हैं, तो क्या करते थे? प्रकृति ने सब कुछ दिया है, तो कुंद फूलों के वो गुच्छे लेते थे, उसको मरोड़कर वो गेंद बनाते थे, और ऐसे लगता था जैसे कि तिल का लड्डू है। और फिर उससे एक दूसरे को मारते थे और कभी निशानी चूकती नहीं थी उनकी और इसमें बड़ा आनंद लेते थे। एक दूसरे को बड़े जोर से, कोई दूर है बेचारा बच्चा कहीं दूसरी ओर देख रहा है, ये जोर से फेंकेगा और दूसरी ओर देखेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि किसने मारा है, फिर वो शक करेगा शायद उसने मारा है और गलत बच्चा होता था तो उसके ऊपर ये चुपके से मार देता, वो सोच अरे मुझे किसने मारा, वो उठा के मारता। तो ऐसी सब लीलाएं होते हैं बच्चों के बीच में, जैसे आजकल भी होते हैं, और इसमें बड़ा आनंद लेते थे सारे बच्चे लोग। तो इस प्रकार से गेंद एक दूसरे के ऊपर फेंकते और कभी कभी कृष्ण भगवान बड़े जोर से वो गेंद को ऊपर आकाश में फेंकते और जब फेंकते तो पगड़ी पहने हुए थे क्योंकि ऊपर देखना पड़ता था ऊपर फेंकने के लिए, तो पगड़ी कहीं गिर ना जाए तो पगड़ी को बाएं हाथ से पकड़ते और दाहिने हाथ से ऊपर फेंक देते। और कभी कभी भगवान श्री कृष्ण गेंद को पकड़ भी लेते और जब ऐसे फेंकते या पकड़ते तो आंखें सूरज की चमक जो है बहुत तीव्र हुआ करती थी तो आंखों को छोटा करके अपने बाएं हाथ से पकड़ते और फिर दाएं हाथ से आसानी से गेंद को पकड़ लेते। कभी कभी ये ग्वाल बाल भी गेंद को बहुत ऊंचा फेंकते थे, इतना ऊंचा फेंकते थे मानो कि वो स्वर्ग देवियों को वो चिढ़ा रहे हैं। और कभी कभी सीधे दशा में फेंकते गेंद को और ऐसे लगता कि मानो दिक्पालों के लिए कानों का कुंडल है, ऐसे कवि कर्णपुर वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से घंटों तक बिना थके हुए, बिना रुकावट के, एक क्षण भी बिना रुके कृष्ण भगवान ऐसे खेल क्रीड़ा में मस्त रहते थे। और कभी कभी उनके शरीर में पसीना आ जाता था जिनसे उनका सौंदर्य बढ़ जाता था। यहां पसीना आने से सौंदर्य बढ़ता नहीं है, लेकिन कृष्ण भगवान के ऊपर जब पसीना आता था तो सौंदर्य उनका बढ़ जाता था और उनके जो पलक है, जो अलक है, वो और भी सुंदर लगने लगते थे उनके चेहरे के ऊपर। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण लीला करते रहे। तो सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से अभी वर्णन करने वाले हैं, एक सारांश देने जा रहे हैं इन सारे लीलाओं का। तो यहां श्लोक आपके सामने है। एवं निगूढ़ात्मगते समायया, बोलिए, गोपात्मजत्वं चरितैर्विडम्बयन् रेमे रमालालितपादपल्लवो ग्राम्यै समं ग्राम्यवदीश चेष्टितः। एक तरह है भगवान जिनके कोमल चरण कमलों की सेवा लक्ष्मी जी स्वयं करती हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा अपने दिव्य ऐश्वर्य को छिपाकर ग्वाल पुत्र की तरह कार्य करते, अन्य ग्रामवासियों के साथ ग्रामीण बालक की भांति विचरण करते हुए वे कभी कभी ऐसे कर्तव्य दिखलाते जो केवल ईश्वर ही कर सकता है। एवं सुखदेव गोस्वामी शुरुआत इस श्लोक का करते हैं एवं शब्द से, इस तरह। इसका अर्थ ये है कि इतने सारे लीलाओं का वर्णन करने के बाद भगवान कह रहे हैं कि इस तरह भगवान लीला कर रहे थे। दूसरे शब्दों में सुखदेव गोस्वामी ने जिन लीलाओं का वर्णन किया है वो तो केवल सैंपल है, थोड़े चंद लीलाओं का वर्णन किया है। लीला भगवान के तो अनंत हैं, हर क्षण पे वो लीला करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ये बताना चाह रहे हैं कि ये मत समझो कि सारे श्री कृष्ण की लीलाओं को मैंने समाप्त कर डाला इन श्लोकों में, मैं तो बस एक दो चार उदाहरण दे रहा हूं। वैसे भगवान की लीला अपार है, अनंत है, केवल एक छोटी सी झलक मैं दे रहा हूं। और क्या कहते हैं भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी कि वो चरण कमल भगवान के पाद पल्लवो रे रमा लालित, जिनकी सेवा रमा देवी करती हैं, वो चरण कमल अब ब्रज में भ्रमण करने लगे। रमा मतलब लक्ष्मी देवी, और राधा जी भी को भी संबोधित करता है। आदि लक्ष्मी तो राधा जी हैं। तो रमा लालित, लालित मतलब जो सेवा की जाती है। तो जिन चरण कमलों को जो कि कमल की तरह हैं, उनकी सेवा जो कि लक्ष्मी देवी करती थी, वही चरण कमल आज ब्रज में चल रहे हैं, ब्रज के भूमि को स्पर्श कर रही हैं, और यही श्री कृष्ण ईश चेष्टितः कभी कभी अद्भुत कार्य संपन्न करके दिखाते हैं, अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं। कब भगवान ऐसे करते हैं? ग्वाल बालों के संग आज जो लीलाओं का वर्णन हमने किया, उसमें तो कोई ऐसी खास ऐश्वर्य की बात नहीं थी। तो कौन से लीलाओं की बात कर रहे हैं ईश चेष्टितः? ये है जब भगवान श्री कृष्ण ऐसे कोई अद्भुत कार्य करते जिसमें वो शक्ति का प्रदर्शन करते, ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते, जैसे कि मानो उन्होंने असुरों का वध किया। ग्वालवाल छोटा सा बच्चा भले इतने बड़े असुर का वध कैसे कर सकता है? तो ऐसे समय भगवान ईश चेष्टितः अपने भगवान होने की का प्रमाण वो सामने रखते कि ठीक है मैं बाल लीला कर रहा हूं, लेकिन ये मत सोचो कि मैं साधारण बालक हूं। तो बीच बीच में ऐसे ईश चेष्टितः ऐसे अद्भुत शक्तिशाली कार्य करते जिससे कि ये सिद्ध हो जाता कि ये भगवान है। लेकिन हालांकि भगवान श्री कृष्ण ऐसे ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते, ग्वाल बाल ऐसे ऐश्वर्य से कभी भी प्रभावित नहीं होते। वो नहीं सोचते थे कि ये भगवान है, वो सोचते थे कि कृष्ण ने मार दिया, कृष्ण बच गए, हमें बचा दिया, केवल देवी देवताओं के भगवान की कृपा से। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ऐसे अपने ऐश्वर्य को प्रकट करते थे कभी कभी, लेकिन फिर भी निगूढ़ आत्मगति ही स्वमायया, अपने योग माया से ही अपने ऐश्वर्य को ढक देते थे। आत्म मायया निगूढ़, तो अपने आप को छुपा देते थे, अपने असली स्वरूप को ढक देते थे, जिससे कि उनके ग्वाल बाल मित्र उनको पहचान नहीं सकते थे, वो जान नहीं सकते थे कि ये स्वयं भगवान है। वो तो उनको केवल अपना मित्र मानते थे। इस प्रकार से भगवान घूम रहे हैं। कौन है वो भगवान? गोप आत्मज त्वम, ये भाव उन्होंने स्वीकार किया। कौन सा भाव? एक ग्वाल बाल का भाव, गोप आत्मज। गोप आत्म मतलब नंद महाराज गोप, जिन्होंने अपने आप को गोप समझा है। गोप आत्म, ये भावना कि मैं गोप हूं। गोप आत्मज, मैंने नंद महाराज से जन्म लिया है। तो वो ऐसे अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं वृंदावन में कि जैसे वो नंद महाराज के एक गोप के पुत्र हैं। गोप आत्मजत्वम, ये जो भावना उनकी है, उनका सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। और ऐसी भावनाओं को स्वीकार करके अपने योग माया से अपने भगवत ऐश्वर्य को ढक के चरितैर विडम्बयन, भगवान श्री कृष्ण ऐसे नकल करते हुए एक साधारण ग्वाल बाल के क्या कर रहे हैं? चरितैर ही अपनी लीला कर रहे हैं और इसमें आनंद ले रहे हैं, रे में रमण करते हैं। इसलिए कृष्ण का ना और एक नाम भी राम है, रमण, क्योंकि जो आध्यात्मिक क्षेत्र में रमण करते हैं। तो यहां जब हम हरे कृष्ण मंत्र में हरे राम बोलते हैं, ये राम के भी कई अर्थ हो सकते हैं। राम परशुराम होते हैं, राम प्रभु रामचंद्र अयोध्या के हो सकते हैं, और राम श्री बलराम जी भी हो सकते हैं, लेकिन राम कृष्ण भी हो सकते हैं। रमण करने वाले राम, राधिका रमण, राधिका के साथ रमण करने वाले वो राम है। तो जब हम हरे राम कहते हैं, वो कृष्ण भी हो सकते हैं, और यहां भी वो रमण करते हैं ग्वाल बालों के संग, इसलिए इनका नाम राम भी कहा जा सकता है। और कैसे लालन, कैसे रमण कर रहे थे? ग्राम यही समम ग्राम्यवद, ग्राम यही मतलब ग्राम के लोग, गांव के लोग। गांव के लोग ज्यादा सरल होते हैं, बड़े शहर के लोगों की तरह नहीं होते, और बड़े सीधे साधे सरल होते हैं। गांव के जो तरीकों को जानते नहीं हैं, गांव के तरीकों को जानना मतलब गांव के जो चमक धमक को जानना, गांव के तकनीकी विज्ञान को जानना, ये इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये चीज गाड़ी वगैरह, और साथ साथ गांव के छल कपट को भी जानना। लेकिन जो गांव के मतलब नहीं, शहर के, क्षमा कीजिए, हम शहर की बात कर रहे हैं, शहर के ऐश्वर्य को समझना मतलब ये सब चीजें, मतलब जो जो गांव के जो जंगल के लोग वगैरह होते हैं वो तो सरल होते हैं, उनको तो ये सब चीजें नहीं मालूम, तकनीकी चीजें नहीं मालूम, यह रास्ता कैसे पार करना, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं उनको नहीं मालूम, सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं। तो ब्रज के लोग भी ऐसे भोले भाले लोग थे, गांव के निवासी छोटे से। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे साधारण ग्राम के व्यक्ति की तरह, ग्राम्यवत, वो भी एक साधारण गांव के बालक की तरह, भोले भाले बच्चे की तरह घूम फिर रहे थे। एक शब्द है ग्राम्य और दूसरा है नागर। नागर के लोग मतलब जो छल कपट पर लगते हैं, नगर में रहने वाले, जो तकनीकी विज्ञान में बहुत दक्ष हैं, अपने आप को बहुत प्रगत ऐसे समझते कि हमने बहुत प्रगति कर ली है, क्योंकि वो थोड़ा कंप्यूटर चला लेते हैं, थोड़ा रेडियो टीवी चला लेते हैं, थोड़ा गाड़ी में चल सकते हैं। तो छोटे छोटे गांव में रहने वाले लोग भले ऐसे तकनीकी विज्ञान में दक्ष न हो, लेकिन हृदय से काफी शुद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने एक साधारण गांव में रहने वाले व्यक्ति की नकल की, ग्राम यही समम ग्राम्यवत, हालांकि वो ईश चेष्टतः, हालांकि वो भगवान स्वयं है और बीच बीच में भगवान की लीला, वो भगवान के ऐश्वर्य का प्रदर्शन भी करते थे। और इस प्रकार से भगवान को अभी फिर पुनः उनके दिव्य ऐश्वर्य का, शक्ति का प्रदर्शन करने का मौका मिला, जब उनके ग्वालवाल मित्रों ने कहा कि हमें ताल वन में जाकर ताल फल खाने हैं। वहां ताल वन में एक असुर है, धेनु का असुर, जिसने अपना अधिकार जमा लिया है, और इसलिए वो किसी को वहां फल खाने के लिए अनुमति नहीं देता। कितने सारे लोग वहां मारे गए, तो आइए हम वहां जाते हैं, तो कृष्ण तुम उसका वध कर लो और फिर हमें ताल फल खाने दो। इस प्रकार से धेनु का असुर का वध कैसे हुआ, वो बलराम जयंती के दिवस पर चर्चा हुई थी, इसलिए दोबारा यहां पर आज चर्चा नहीं करेंगे। आज के लिए कहना इतना काफी है कि वहां तालवन में कृष्ण सबको लेकर गए, बलराम जी ने धेनु का असुर का वध किया, और फिर बाद में कृष्ण और बलराम ने मिलकर अन्य सारे धेनु का असुर के साथियों का भी वध किया, उनको पीछे के पैरों से पकड़ के घुमा फिराकर तेजी से उनको ऊपर फेंक दिया और उन वृक्षों के ऊपर जाकर वो रह गए। उनका रंग नीला था और खून के बूंद जो उनके शरीर पे थे लाल थे। तो ऐसा लग रहा था मनोरम दृश्य तालवन में कि अभी नीले और लाल बादल सब जगह छाए हुए हैं तालवन के आकाश में, और ढेर सारे फल भी नीचे गिरे हुए थे, लेकिन ग्वाल बालों ने उसको स्वीकार नहीं किया क्योंकि प्रदूषित हो गए थे, उन असुरों के खून का स्पर्श हुआ था, इसलिए उन्होंने इन फल को नहीं खाया, हालांकि इस उद्देश्य से ही आए थे वो। लेकिन फिर भी जब उन्होंने देखा कि खून का स्पर्श हुआ है तो फिर वहां से वो चले गए, उनका काम हो गया था, धेनु का असुर का वध हो गया, तो वो चले गए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण फिर से लीला आरंभ किए, और इसके बाद कल से चर्चा करेंगे वो लीला जो कि बहुत मधुर है और जो वैष्णवों को बहुत प्रिय है, और वो है प्रत्यवर्तन लीला। मतलब जब भगवान श्री कृष्ण जंगल से गांव में वृंदावन में लौट कर आते थे, वो भी बहुत सुंदर बात है, कई भक्तों को ये लीला भी बहुत प्रिय है, और गोपियां ब्रजवासियां सारे कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा बहुत आतुरता से करते थे। तो किस प्रकार कृष्ण जंगल को छोड़कर वन में लौट के आए और किस प्रकार ब्रजवासियों ने उनका स्वागत किया और इसके आगे चल के कौन सी लीलाएं भगवान ने की, वो कल सुबह हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न?
हरे कृष्ण, जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी और गोपाल जो ऐसा हर दिन जंगल में वगैरह जाके क्रीड़ा करते थे तो पाठशाला वगैरह कब जाते थे?
अच्छी खबर बताऊं, वो जाते ही नहीं थे, वही उनकी पाठशाला थी। देखिए, इतनी अच्छी पाठशाला थी कि फिर भी उनको सब कुछ मालूम था। धेनुकासुर के वध के समय हम चर्चा कर चुके थे, आज भी थोड़ी बहुत संक्षेप में बोले कि ग्वाल बालों ने वो फल ताल फल नहीं लिए, जानते थे क्या स्वच्छ है, क्या शुचि है, क्या अशुचि है, वो जानते थे। जो मर्यादा है, जो वैदिक संस्कृति है, कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उठना बैठना चाहिए, सब कुछ जानते थे। 5 साल के थे फिर भी, क्योंकि घर में इतने अच्छे संस्कार मिले थे। लेकिन आजकल के बच्चे बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में जाते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं मालूम, नियम क्या होने चाहिए, कुछ नियम का पालन नहीं, कुछ नहीं, कब भी खाओ, कब भी पियो, कुछ भी करो। तो किसका शिक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण है? आजकल के स्कूल कॉलेज में जाकर भी लोग जो ये सरल चीजें हैं नहीं जानते, और न माता पिता जानते हैं, तो वो क्या सिखाएंगे बच्चों को? लेकिन वो पाठशाला में नहीं जाते थे, लेकिन फिर भी उनको सब मालूम था। गोपियां भी कभी पाठशाला में नहीं गई, लेकिन वो भी सब जानते थे। जैसे माता यशोदा और गोपियां अनेक मंत्र जानते थे, कवच गोबर से, गौमूत्र से वो कृष्ण का संरक्षण करती, अलग अलग उनको लेप लगाती गोबर का इत्यादि, और अलग अलग स्थान की सुरक्षा लिए मंत्रों का उच्चारण करते। ये सारे चीजें गोपियां जानती थी, कहां से सीखे वो लोग? पाठशाला तो कभी नहीं गए। कुंती महारानी कभी पाठशाला नहीं गई, लेकिन सुंदर सुंदर श्लोक जानते थे, दर्शन शास्त्र में बड़े निपुण, सारी फिलॉसफी जानते थे वो। लेकिन आजकल हमारे विद्यार्थी कॉलेज स्कूल में जाते हैं, लेकिन आध्यात्म के बारे में, वैदिक संस्कृति के बारे में, भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते। तो क्या है हमारी कीमत हमारे पाठशालाओं की, विश्वविद्यालयों की? इसलिए प्रभुपाद जी बताया करते थे, ये हैं कतलखाने, आध्यात्मिक कतलखाने। हमारे बच्चों की आध्यात्मिक संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। नास्तिकता सिखाते हैं आजकल के धर्म निरपेक्षता के काल में। पहले तो बचपन में स्कूल कॉलेज में भी, स्कूलों में भी, हमें याद है जब हम छोटे थे, हमारे स्कूल पहले दूसरी तीसरी कक्षा में कितने रामायण महाभारत की कथाएं आती थी। आजकल मुझे मालूम नहीं, शायद ऐसा नहीं होता है। धर्म निरपेक्षता के नाम से सब निकाल दिया है, तो कोई संस्कृति रही नहीं आजकल के शिक्षा प्रणाली में। केवल उनको द्विपद पशु बना रहे हैं, केवल पशु बना रहे हैं आजकल के स्कूल कॉलेज हमारे बच्चों को। साफ बात तो यही है, द्विपद पशु, चमक धमक वाले पशु, सूट टाई वाले पशु, सूट बूट गाड़ी में घूमने वाले पशु।
ये आपने अभी जो बताया कि जो ग्वाल बाल साधु थे, उन्होंने उनके चरण कमलों का स्पर्श किया और उनके चरणों को दबाया, तो साधु तो सभी ग्वाल बाल ही थे, तो कुछ को क्यों सेवा उन्होंने दी भगवान ने?
नहीं, सभी को सेवा में लगाया, इसलिए हम वर्णन कर रहे थे कि भगवान ने अपने आप को विस्तृत किया कई रूपों में, और 3-4 ग्वाल बाल मिलकर एक शैया बनाते, इधर 3-4, उधर 3-4, उधर 3-4, ऐसे सारे ग्वाल बालों के दल थे। वो सोच रहे थे कि कृष्ण हमारी शैया में सो रहे हैं, फिर कृष्ण के लिए शैया बनाते, एक ग्वाल बाल बैठ जाता, उसकी गोदी में कृष्ण अपना सर रख देते और शैया पर सो जाते, और दूसरे जो दल में बाकी और जो ग्वाल बाल थे, कोई पंखा चलाता, कोई सुंदर गीत गाता, कोई उनके पैर चरण दबाता। तो इस प्रकार से अलग अलग सेवा, सारे जो ग्वाल बाल थे कृष्ण भगवान की सेवा में लगे हुए थे। तो हरेक की सेवा भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार की।
जब बलराम और ये कृष्ण सांदीपनि मुनि के पास जो गए, वो लीला इसके बाद में,
ये तो मथुरा लीला के दौरान है। जब कृष्ण और बलराम वृंदावन छोड़ के चले गए, मथुरा में आए, तब की बात है। फिर मथुरा में आए, उस समय राजा उग्रसेन इत्यादि, वसुदेव देवकी, उन्होंने उनको उज्जैन भेजा,
जहां पर सांदीपनि मुनि का आश्रम था, वहां उन्होंने ज्ञान सीखा।
हरि बोल। और एक जब ये कश्यप मुनि और द्वितीय आदिति वो जो भूतल पे ही थे तो सारे देव देवता इधर ही जन्म हो गया?
नहीं, भूतल में नहीं, उनका जन्म स्वर्ग लोक में हुआ, इधर नहीं, ये ऊपर के लोक की बात है। फिर वामन देव इधर आए, आदित्य और कश्यप स्वर्ग लोक में ही थे, वो वहीं के निवासी हैं। और फिर जब बलि महाराज के ऊपर कृपा करनी थी तो फिर वो वहां पर, यहां पर आए, पृथ्वी पर आए वो।